धवला पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 15 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्षायाणं नमो लोए सौवसाहूणं तिहुवनशिरसे हरये भवभयगभ्रादुनिगदेपणं सिद्धे जीवठाण समलिन गुणचूलियं वोच्चम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें प्रथम खंड जो जीवस्थान नामक है उसमें अपना चूली का प्रकरण चल रहा है और अभी हम छठवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 150 पर आ गए। 150 कल आबादा कांडक की बात निकली थी। देखो तो आबादा काल अलग बात है और आबादा कांडक बात अलग है। आबादा उसे कहते हैं कि कोई एक समय प्रबद्ध है तो उसमें कोई विशिष्ट स्थिति बनती है, तो कितने परमाणु में वो टॉप मोस्ट स्थिति बनती है, किसी में एक समय कम, दो समय कम, तीन समय कम, इस तरह से नीचे आते 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 तो कहते कि जिस स्थिति वाले कोई परमाणु नहीं है, ऐसे जो नीचे की स्थितियां उसको कहेंगे आबाधा काल। जैसे हमने देखा था ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थितिबंध कितना है तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर, और उसकी उत्कृष्ट आबाधा यानी उतनी स्थिति के लिए आबाधा कितनी है तो 3000 वर्ष। कोई जीव ने मान लेते हैं ज्ञानावरण कर्म का ही 20 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध किया तो उसको 2000 वर्ष होता है। परंतु देखो ये केवल 30 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस एक समय, माइनस दो समय, माइनस तीन समय, कितने ही अलग अलग स्थितियों के लिए 3000 वर्ष की आबाधा रहती है। तो जितने अलग अलग स्थितियों के लिए उतनी की उतनी आबाधा रहती है, उन नंबर ऑफ स्थितियों को जिसको हम कहेंगे निषेक, कॉमन आबाधा है, उसको कहेंगे आबाधा कांडक। तो आबाधा कांडक का प्रमाण कैसा निकालना, उत्कृष्ट स्थिति बंध जो है उत्कृष्ट डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट आबाधा, तो जो नंबर आएगी वो नंबर क्या कहलाता है, वो आबाधा कांडक। अभी एक आबाधा कांडक के बाद दूसरा नीचे की जो स्थिति होगी उसके लिए 3000 वर्ष माइनस एक समय उसका आबाधा होगी उस पूरे कांडक के लिए, फिर नीचे और नीचे आओ तो माइनस दो समय, इस तरह से आबाधा के जो अलग अलग वेरिएशन है। ख्याल में आती है बात, आबाधा काल, हाँ तो आबाधा कांडक हुआ। अभी यहाँ का कोई एग्जाम्पल देके वही समझाएंगे यहाँ 150 पृष्ठ पर। देखो उदाहरण जहाँ लिखा है ना वहां से हम पढ़ते हैं। मान लो उत्कृष्ट स्थिति 64 समय है और उत्कृष्ट आबाधा 16 समय है, यानी 64 समय की स्थिति बंधी और 16 समय का आबाधा, तो कांडक का प्रमाण क्या होगा, 4। 64 को 16 से भाग देंगे अतएव आबाधा कांडक का प्रमाण 64 को 16 का भाग देकर 4 होता है, यानी 4 जुदी जुदी स्थितियों के लिए, यानी 64 है, 63 है, 62 है, 61 के लिए आबाधा काल 16 समय का, उस समय प्रबद्ध के लिए। एक ही समय प्रबद्ध में अलग अलग आबाधे नहीं होते हैं, हाँ। दूसरा कोई समय प्रबद्ध होगा जिसमें 60 समय की स्थिति बांधी है, तो 60 हो, 59 हो, 58 हो, 57 हो, उस सब के लिए आबाधा काल कितना है, एक माइनस करना 16 में से, एक माइनस 15 समय होगा, वो आबाधा काल होगा। अभी इसको यहां से पढ़ेंगे। देखो मान लो जघन्य स्थिति 45 समय है, अतएव स्थिति के भेद 64 से 45 तक हो गए, वो तय हुआ है से करना, जिनकी रचना आबाधा कांडकों के अनुसार इस प्रकार होगी, अनुसर हुआ अनुसार इस प्रकार होगी। देखो इन्हें एक एक आबाधा कांडक को एक लाइन में लिखेंगे हम, तो 64, 63, 62-61 इनके लिए उत्कृष्ट आबाधा होगी 16 समय की, 60-59-58-57 एक समय कम आबाधा होगी, उत्कृष्ट आबाधा में से एक समय कम यानी 15 समय होगी, 52-56-55-54-53 के लिए दो समय कम उत्कृष्ट आबाधा यानी 14 समय होगी, 52-51-50-49 तीन समय कम उत्कृष्ट आबाधा यानी 16 में से तीन कम 13 समय हो जाएगी, 48-47-46-45 चार समय कम उत्कृष्ट आबाधा यानी 12 समय होगी। देखो कांडक कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कांडक कितने हो गए, यहाँ कितने बताए, आबाधा कांडक का प्रमाण 4 है, एक कांडक दूसरा कांडक तीसरा कांडक ऐसे कितने हुए, 5 हुए ना। देखो वो कैसे करना, क्योंकि स्थिति के भेद कितने हैं, 64 से लेकर 45 तक उतने स्थिति के भेद है ना, 64-45+1 करना पड़ेगा। देखो 64 में से 45 माइनस करो, 45 को भी गिनना है 64 को भी गिनना है, तो हमारे पास कितने टोटल 20 भेद हो गए, समझ में आते बात। अब यहाँ लिखे ना एक एक लाइन में चार चार लिखे और पांच लाइन है, तो 20 भेद हुए कि नहीं, 64 से लेकर 45 तक 20 भेद हुए अलग अलग किसके, स्थितियों के, और उसमें आबाधा का प्रमाण कितना है, आबाधा का प्रमाण था सुबला उत्कृष्ट आबाधा का, आबाधा कांडक का प्रमाण था 4, तो नंबर ऑफ आबाधा कांडक कितने हो गए, 20 डिवाइडेड बाय 4 5। देखो उत्कृष्ट स्थिति डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट आबाधा इज इक्वल टू आबाधा कांडक, एक बात। अब उत्कृष्ट स्थिति में से जघन्य स्थिति माइनस करो और प्लस वन करो, 64-45+1 तो नंबर ऑफ स्थितियां हो जाएगी अलग अलग जुदी जुदी, उत्कृष्ट से जघन्य स्थिति तक के भेद, स्थितियों के भेद 64 में से 45 माइनस करो तो 19 आ गए, प्लस 1 20 हो गए, क्योंकि हमको 45 को भी गिनना है और 64 को भी गिनना है, तो 20 भेद हुए, तो स्थितियों के 20 भेद हुए उत्कृष्ट से जघन्य तक, और आबाधा कांडक का प्रमाण है 4, तो 20 को 4 से भाग देंगे तो 5 संख्या आती है, तो ऐसे कितने आबाधा कांडक हुए, तो 5 आबाधा कांडक हुए अलग अलग। पहले वो जो ऊपर का उत्कृष्ट जो था ऊपर का, उसके लिए 16 समय, फिर 15 समय, 14-13-12 ख्याल में, ये आबाधा के भी इतने जितने कांडक हो गए उतने आबाधा के भेद हो गया। जब अभी यहाँ उनकी भाषा में समझेंगे, देखो ये 5 आबाधा के भेद हुए, कौन से, 16 समय, 15 समय, 14 समय, 13 समय, 12 समय, आबाधा ये जुदी जुदी हुई, आबाधा कांडक 4 है और उसके नंबर ऑफ आबाधा कांडक 5 हुए, या उन्होंने आबाधा के भेद कितने हुए तो 5 हुए, यानी कांडक को आबाधा के भेदों से गुणा किया उन्होंने तो 20 संख्या दी, तो 20 क्या है, वो स्थिति के भेद है जघन्य से उत्कृष्ट तक का, या उत्कृष्ट से जघन्य तक, ये अलग अलग स्थितियों का बंध हो सकता है, ये स्थिति बंध के भेद वेरिएशंस। तो स्थिति भेद 20 होते हैं, उसमें अगर एक माइनस कर तो विचार स्थान, विचार ने पलटने के स्थान कितने हो गए, तो 19 हो गए, एक किसी को कांस्टेंट रखो तो कितने बार पलटेगा वो, तो 19 बार। इन्हीं विचार स्थानों को उत्कृष्ट स्थिति में से घटाने पर जघन्य स्थिति प्राप्त होती है, यानी अलग अलग अपेक्षाओं से इसको बता रहे हैं, यानी 19 को माइनस करो 64 में से तो 45 आ गया, तो जघन्य स्थिति। स्थिति की क्रमहानि भी इतने ही स्थानों में होती है, क्रमहानि ने क्रम से हानि एक एक समय से कम कहेंगे तो स्थिति के भेद भी इतने हो जाएंगे। इस प्रकार जेठा बाहो वट्टीय उमसार कर्मकांड 147 गाथा के अनुसार गणित क्रम से निकले हुए स्थिति के भेदों को विचार स्थान समझना चाहिए। विचार है वो पलटने के स्थान, स्थिति जो पलटेगी अलग अलग कितने हो सकते हैं, वेरिएशंस कितने हो गए स्थिति के भेद, उसको यहाँ विचार स्थान कहा। देखो अभी पहले वाला सूत्र जरा देख लेते हैं, यहाँ उन्होंने क्या बताए थे कि उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, कौन कौन से, वो चार कर्म बताए थे, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, याद है कौन कौन से कर्मों में सोनी बेन? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, असातावेदनी, बहुत अच्छा। इनके 30 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है, और उसका आबाधा कितना होता है, उत्कृष्ट आबाधा उसकी 3000 वर्ष, और उसके लिए उन्होंने सारे बातें समझाई, आबाधा क्या है, आबाधा कांडक क्या है, आदि बातें समझ ली। अब हम 6 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे, पेज नंबर 150 पर, आभा धूणिया कम्मठिदी कम्मणी से ओ, यानी जो हमने 30 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति देखी और उसका आबाधा भी देखे हमने, तो पूरी जो स्थिति है उसमें से आबाधा को माइनस करेंगे। निषेक कितने बने अगर कोई पूछे, निषेक की रचना हम कैसे दिखाते हैं, ये आबाधा है और ये निषेक बने। अभी इन्होंने जो उदाहरण दिया 64 उत्कृष्ट स्थिति बंदी और उसकी आबाधा कितनी है 16, तो निषेक कितने बने, निषेक कितने बने, 1 2 3 4 64 माइनस 16 48 निषेक बने जुदे जुदे, 1 2 3 4 इस तरह से। यहाँ ये उदाहरण उन्होंने दूसरा लिया है, 45 जगह ने स्थिति हुई, आबाधा कितनी है अलग अलग, उसके लिए अलग बताई थी बात, यानी एक समय की बात है ये अलग अलग समय प्रबद्धों की यहाँ बातें लिखी है। ये जो ऊपर उदाहरण दिया ना मैं 64 से लेकर 45 तक जो अलग अलग बातें लिखी है वो तो अलग अलग समय प्रबद्धों की बात है, पर एक समय प्रबद्ध में जब 64 स्थिति बंदी है उस समय 16 आबाधा थी, तो उस एक समय प्रबद्ध में निषेक कितने बने उसकी चर्चा है। ख्याल में? तो 64 जब स्थिति बांधी, यानी ये बंद का समय, और 64 समय स्थिति बांधी उसमें से 16 समय की आबाधा है, यानी 16 समयों तक कोई निषेक नहीं है। पहला निषेक कहाँ है, 17वें समय पर, यानी 17वें 18वें 19 इस तरह से काउंट करो, तो कितने निषेक बनेंगे, 64 में से 16 माइनस करो, इतने निषेक बनेंगे, ख्याल में आई, 48 निषेक बनेंगे। अभी 45 अगर स्थिति बनती है, 45 के लिए हमने वहां आबाधा कितनी निकाली थी, 12 समय, तो अगर 45 स्थिति बनती है तो उसमें से 12 तो आबाधा है, तो 13वें से लेकर 45 तक कितने निषेक बनेंगे, यानी 45 माइनस 12 इतने वहां निषेक बन जाएगी। ये ख्याल में आई बात, यही यहाँ कहा भी, उसको क्या कहा, आबाधुनी यानी आबाधा से उन कम्मठिदी कर्म स्थिति में से आबाधा कम करो उतने कम्मणि से वो उतने कर्म के निषेक बनेंगे उस पर्टिकुलर समय प्रबद्ध के लिए। अभी हम पढ़ेंगे हिंदी में, देखो, पूर्वोक्त ज्ञानावरणादि कर्मों का आबाधा काल से हीन कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक काल होता है। अपनी भाषा में हम ऐसा कि आबाधा काल प्लस कर्म निषेक काल इज इक्वल टू स्थिति, या स्थिति कर्म स्थिति माइनस आबाधा काल इज इक्वल टू कर्म निषेक काल, यानी जिसको हम कर्म के निषेक बने हैं उसको दूसरी भाषा में ऐसा भी कहते हैं। कितनी स्थिति बंदी है, बंद के समय से 64 समय की बंदी, तो 64 समय कैसे होते हैं, आबाधा काल प्लस उसका निषेक काल, निषेक काल को यहाँ उदय काल भी कहते हैं, आबाधा काल प्लस उदय काल, इतनी कर्म स्थिति है। ये 7 कर्मों के बारे में होगा, आयु की बात अलग है, आयु तो आबाधा काल पूर्व भव में चला जाता है, इतनी बात ख्याल में आई। अब यहाँ से पढ़ते हैं, पूर्वोक्त ज्ञानावरणादि कर्मों का आबाधा काल से हीन कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक काल होता है। देखो ये शब्दों का और वाक्य का अर्थ हमें समझना आना चाहिए, बस इतनी बात है, ये क्या कहते वो अपने ख्याल में आ जाए, बात समझ में आई तो बस, याद नहीं रहता वो उसकी चिंता मत करना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं उसका अर्थ भाषित हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे बात, शंका, आबाधा के जान लेने पर उसके ऊपर अर्थात आबाधा काल के पश्चात कर्म निषेक होता है, यह बात नहीं कहने पर भी जानी जाती है, अतएव यह सूत्र नहीं कहना चाहिए, कहते आबादा में कोई निषेक नहीं है, उसके ऊपर ही निषेक होते हैं, वो तो बताने की क्या जरूरत है, वो तो जान ही जाते हैं। देखो यहाँ तो यह लिखा है ना, आबादा के ऊपर निषेक रचना होती है, यानी आबादा के काल के पश्चात निषेक रचना, ये वाक्य है। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, ये निषेक रचना किस समय, जिस समय बंद हुआ उसी समय है। पर कितने किसी गांव से भी, मैं नाम नहीं लेती, वहां एक विद्वान का फोन आया था, तो कहते कि आबादा काल के पश्चात निषेक रचना होती है, यानी बंद समय हुआ और फिर 16, यहाँ हमारे उदाहरण में 16 समय बीत गए, एक्चुअली में 3000 वर्ष बीत गए, उसके बाद उसकी निषेक रचना होती है। मैंने बोला ऐसे थोड़ी होता है, यानी उनका ऐसा मानना था कि 3000 वर्ष बीत जाने पर उस समय प्रबद्ध की रचना हुई। अरे वो तो उसी समय होती है। मैंने बोला ऐसा नहीं उसका अर्थ, आबादा काल इतने काल के ऊपर सारे निषेक बनते, पर वो उसी समय बनते हैं, यानी ये निषेक, क्योंकि बाद में तो उसमें तो उथल पुथल होती रहती है ना, ऊपर नीचे, नहीं तो वो होगा कैसे। ये आबादा के ऊपर निषेक रचना होती, इसका वाक्यकार था उन्होंने अलग से लगाया कि फिर उनके साथ चर्चा हो गई थी, हमने हम तो ऐसा समझते थे क्योंकि निषेक रचना में आवली के बाद तो ऊपर नीचे सब निषेक ही नहीं वहां बनेंगे, तो ये बनता यानी वहां कुछ बनने की बात ही नहीं है, कुछ वहां स्ट्रक्चर नहीं तैयार हो रहा, ये तो बंद के समय में क्या कर्मों की स्थिति है उसको हम बता रहे हैं, यहाँ पर पोजीशन उसकी हम इससे जान सकते हैं। आवली के बाद तो उसमें ऊपर नीचे साफ चालू हो जाता है, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण सब कुछ, उदीर्णा होकर उदय सब कुछ चल रहा है, तो ये बंद के समय क्या पोजीशन है उसकी बात है यहाँ पर, यानी ये आबाधा कहो निषेक रचना कहो, ये बंद के समय ही कहना है उसको। तो यहाँ शंकाकार के प्रश्न, क्यों कहते हो, उसका समाधान नहीं, क्योंकि प्रवचन में यानी परमागम में अनुमान प्रमाण के प्रमाणता नहीं मानी गई। क्या कहना चाहते हैं, ये जब आगम प्रमाण कहते हैं तो उसमें अनुमान यानी इससे वो सिद्ध हो जाता है अनुमान से, तो उसको प्रमाण नहीं कहते। ये जो सूत्र में जो बताया है उसको हम प्रमाण कहेंगे, उसको आगम प्रमाण कहेंगे, इसको प्रवचन प्रमाण का, जो केवल ज्ञान पूर्वक उत्पन्न हुआ है, प्रायः प्राय ने मुख्यतः अतीन्द्रिय पदार्थों को विषय करने वाला है, अचिंत्य स्वभावी है, यानी हमारे कल्पना के बाहर है और युक्ति के विषय से परे है, यानी युक्ति के विषय से, यानी उसमें हम अपने आइडिया अपने कुछ नहीं लगा सकते उसमें, जिसको अनुमान कहेंगे उसका नाम आगम है। देखो आगम की परिभाषा क्या बताई उन्होंने, पहले में पहले बताया केवल ज्ञान पूर्वक उत्पन्न हुआ है। केवल ज्ञान पूर्वक क्यों, क्योंकि केवल ज्ञानी की ये वाणी है और उसके अनुसार इसकी रचना हुई है, और अतीन्द्रिय पदार्थों को विषय करने वाला है, क्योंकि ये कर्म आदि उसकी पोजीशन, उसकी जो कुछ रचनाएं होती है उसमें जो कुछ अवस्थाएं होती है वो इंद्रियों का विषय नहीं है, सूक्ष्म पदार्थ है, वो केवल ज्ञानी उसको जान रहे हैं, तो उसको विषय करने वाला है, उसके बारे में बताने वाला है। यह जीव के परिणाम है, कर्मों की अवस्थाएं हैं, जो अन्यत्र हम यहाँ बैठे बैठे पूरे त्रिलोक में कहाँ क्या रचना है ये सब कैसे है, इंद्रिय ज्ञान से हमारे गम्य नहीं है, उसको विषय करने वाला है, अचिंत्य स्वभावी है और युक्ति के विषय से परे है, उसका नाम आगम है। अतएव उस आगम में लिंग अर्थात अनुमान के बल से, ये कहीं आया है लिंग शब्द, अलिंग ग्रहण में भी एक बोल ये है, यानी आत्मा केवल लिंग से यानी अनुमान से ही जाना जाए ऐसा नहीं, वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय। अनुमान से तो हम लगाते एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय आदि, हमने अनुमान से नक्की किया यहाँ जीव है, परंतु मात्र अनुमान से ऐसे शब्द डाला है, केवल अनुमान से ही जाना जाता है ऐसा नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है, यानी हम प्रत्यक्ष अपने आप को जानते हैं, इसलिए वहां वो अलिंग ग्रहण में ये भी शब्द लिया। तो यहाँ क्या लिखा देखो, उस आगम में, अभी ये आगम की चर्चा है, आगम में जो बात बताई है वो आगम में लिंग अर्थात अनुमान के बल से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यानी हम अनुमान से कुछ कहने जाए तो उसमें तो वो बातें गलत होती। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सूक्ष्म केंद्रीय अपर्याप्त में कोई जीव लगातार रहे, मरकज सूक्ष्म पर्याप्त सूक्ष्म पर्याप्त सूक्ष्म पर्याप्त कितने काल तक रहता है, तो एक अंतर्मूर्त सूक्ष्म पर्याप्त तो एक केंद्रीय में रहे कोई जीव लगातार उसी भव में चलता रहे तो कितना होता है, एक अंतर्मूर्त, उससे ज्यादा नहीं। तो कहते सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म पर्याप्त में मिलकर रहने का काल कितना होगा, तो कोई कहेंगे कि दो अंतर्मूर्त, तो कहते अनुमान से परे है, तो कहते उसका काल तो असंख्यात लोक प्रमाण है, कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त कभी पर्याप्त कभी पर्याप्त, तो ये अनुमान से परे हो गया ना। ये तो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है, ये हमारे सभी बातें वो अनुमान से नहीं लगती, क्योंकि हम तर्क करने जाते हैं, हमें ऐसा लगता है ना हम बहुत होशियार है और इसमें से हम तर्क से निकालेंगे, तो सभी चीजें तर्क से नहीं प्रूव होती हैं। ख्याल में आती है बात, कितने ये आगम को प्रमाण क्यों कहा, ये बहुत महत्व की बात है। तो कहते उस आगम में लिंग अर्थात अनुमान के बल से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, जो ऑलरेडी आगम में बताई बातें हैं उसके लिए हम अनुमान लगा के हाँ हाँ ये ऐसा उसको ये ऐसा क्यों कहा, ये कैसे हो सकता है, ये हम उसको अनुमान लगाओ बाद में, पहले में आगम में बताई हुई होनी चाहिए। यहाँ पर भी कितने बार वो कहते क्योंकि ऐसे सूत्र में कहा है, सभी कहते हैं, इसलिए यह सूत्र बनाना ही चाहिए, अथवा आबाधा से ऊपर निषेक रचना होती है, यह बात यद्यपि युक्ति से जानी जाती है, तथापि क्या ऊपर की सर्व स्थितियों में पुद्गल परमाणुओं की रचना समान होती है अथवा असमान होती है, यह बात नहीं जानी जाती है। यानी सभी ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ स्थितियां बनी, कुछ बीच में गैप हुआ, फिर उस ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम वर्गणा और स्पर्धकों में देखते थे, वर्गणा लगातार नहीं ना, उसमें बीच में कुछ गैप हो जाता है, फिर दूसरा स्पर्धक शुरू हो जाता है, तो वहां ऐसा अपना अनुमान नहीं चलेगा। निषेक रचना कैसी, लगातार एक एक समय के डिफरेंस से निषेक बनते हैं, तो ये वो कहना जरूरी था क्योंकि इतने निषेक बने हैं। नहीं तो ऐसा भी होता ना, मान लेते नीचे के कुछ निषेक बने, फिर बीच वाले कोई स्थितियां नहीं बनी, ऊपर के बने, ऐसा भी हो सकता था। तो कहते ये तो कह दिया उन्होंने कि आबाधा प्लस ऊपर की जितने हैं उतने तो वहां कर्म स्थितियां बनेगी, निषेक रचना उतनी होगी, इसलिए सूत्र बनाना ही चाहिए, अथवा ये पढ़ा मैंने, आबाधा से ऊपर निषेक रचना होती है, यह बात यद्यपि युक्ति से जानी जाती है, तथापि क्या ऊपर की सर्व स्थितियों में, यानी एक एक समय के डिफरेंस से सभी स्थितियों में पुद्गल परमाणुओं की रचना समान होती है अथवा असमान होती है, ये तो बात अभी हमने देखी नहीं, उसमें नंबर ऑफ परमाणु कितने होते हैं उसकी अभी चर्चा नहीं आई है, वो करेंगे। यह बात नहीं जानी जाती है, अतएव प्रदेश रचना के स्वरूप को बतलाने के लिए यह सूत्र बनाना ही चाहिए। प्रदेश रचना का अर्थ होता है प्रत्येक निषेक में परमाणुओं की संख्या, उसको कहेंगे प्रदेश, परमाणुओं की संख्या, क्योंकि प्रदेश बंध हम किसको कहेंगे, नंबर ऑफ परमाणु कितने बंधे उसको प्रदेश बंध कहते हैं। अब ये जो एक समय में बंधे हुए कि हमने जो यहाँ आड़े लाइन देखे ना ऊपर टेपरिंग दिखाया है सारा, उसका अर्थ क्या है, जो एक समय में बंधे हुए है, जिस समय समय प्रबद्ध में परमाणुओं की पोजीशन क्या है, तो नीचे के जो 3000 वर्ष और एक समय पर जो निषेक पड़ा है उन सभी परमाणुओं में स्थिति उतनी की उतनी है। निषेक उसी को कहते हैं जिसमें समान स्थिति वाले परमाणु हैं। तो आबाधा काल के ऊपर का जो पहला निषेक है उसमें परमाणु की संख्या सर्वाधिक है और ऊपर एक एक चयन एक एक फिक्स डिस्टेंस से कम होते चले जाता है। जब इस निषेक से आधा हो जाता है उसके ऊपर वो चय भी आधा होता है, वो सारी बातें वो बताएंगे अभी। तो ये सारा बताने के लिए पहले निषेक कितने बने वो भी कहना चाहिए, फिर उसमें परमाणु कैसे घटते जाते उसकी चर्चा करेंगे। यानी प्रदेश रचना भी बताएंगे जिसको निषेक रचना भी कहते हैं, यानी निषेकों में परमाणुओं की संख्या। अब उत्कृष्ट स्थिति की प्रदेश रचना के क्रम को कहते हैं। अभी उत्कृष्ट स्थिति बंदी ऐसा मानकर वहां क्या पोजीशन है प्रदेशों की यानी परमाणु की संख्या की उसकी बताएंगे। वह इस प्रकार है, यद्यपि एक समय प्रबद्ध के सर्व प्रदेश प्रदेश का अर्थ क्या कहा मैंने अभी, परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ परमाणु। क्या कहना चाहते हैं, यद्यपि एक समय प्रबद्ध के सर्व प्रदेश, देखो समय प्रबद्ध है ना, एक समय में बंधने वाले परमाणुओं की संख्या। तो देखो एक समय में जीव कारमाण वर्गणा कितनी ग्रहण करता, कारमाण वर्गणा हो तो कहते अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग, इतनी कारमाण वर्गणा ग्रहण करता है। और एक एक कारमाण वर्गणा में परमाणु कितने हैं, वे भी अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग, यानी वो जो अनंत वाली संख्या उसको अनंत गुणा अनंत करो उतने तो परमाणु एक समय में जीव ग्रहण करता है, उसको समय प्रबद्ध कहेंगे। हाँ, समय प्रबद्ध में भी हीनाधिकता होती है, जहां योग ज्यादा, जितने मल्टीप्लीकेशन में योग होगा उतने मल्टीप्लीकेशन में समय प्रबद्ध होता है। योग दो गुना हो जाए समय प्रबद्ध दो गुना, योग असंख्यात गुना हो जाए समय प्रबद्ध असंख्यात गुना, फिर भी उसको सामान्य से क्या कहेंगे, समय प्रबद्ध। यहाँ क्या कहते देखो, यद्यपि एक समय प्रबद्ध के सर्व प्रदेश यानी सभी नंबर ऑफ परमाणु अभव्य सिद्धिक जीवों से अनंत गुणित और सिद्ध जीवों के अनंत वे भाग मात्र होते हैं, तथापि संदृष्टि में उन्हें 63,600 संख्या प्रमाण ग्रहण करना चाहिए। अब ये सब बातें यहाँ संदृष्टि में बताएंगे, संदृष्टि का अर्थ यहाँ काल्पनिक संख्या बताते हैं, इसको कहते हैं अंक संदृष्टि, और एक्चुअल फिगर्स लेके उसको कोई चिन्हांकित करके बताएंगे उसको कहेंगे अर्थ संदृष्टि। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि 6300 परमाणु का बंध हुआ, हमारा समय प्रबद्ध कितने परमाणु का है, 6300, उसका हिसाब बताएंगे। यहाँ अर्थात एक समय प्रबद्ध में नाना गुणहानी शलाकाए पल्योपम के असंख्यात पे भाग मात्र होती है। अब यहाँ कहते हैं ये नाना क्या है, गुणहानी क्या है, शलाका क्या है, कुछ पता नहीं ना हमको। देखो हाँ अभी बताएंगे, डेफिनेशन पढ़ने के पहले हम अपनी भाषा में देखेंगे। अभी जो निषेक रचना बताए जाने वाले हैं, तो यहाँ सर्वाधिक परमाणु है, इसमें थोड़े कम थोड़े कम थोड़े कम, तो जितने निषेक जाके वो संख्या आधी हो जाएगी, उसको कहेंगे एक गुण हानि, गुण हानि ने गुणित प्रमाण में हानि, उसको कहेंगे द्विगुण हानि, दो गुणा हानि यानी आधा होना, चार गुणहानि 1/4। गुणा हानि का अर्थ क्या है, उतने गुणित प्रमाण में हानि, यहाँ तो ये गुणहानि ऐसे शब्द है भी, उसके द्विगुण हानि आदि शब्द वो सब निकाल देते, केवल उसको क्या कहेंगे हम, गुणहानि। गुणहानि का अर्थ होता है ये जो एक विशिष्ट संख्या घटती घटती जब आधा हो जाते हैं, मान लेते 8 निषेक जाके ये आधा हुआ, तो 8 निषेकों की एक गुणहानि हुई, ऊपर के 8 निषेकों में उसका भी आधा होता है। अभी वो बताएंगे आगे चलकर, यहाँ 512 परमाणु है, जहाँ जहाँ तक वो होते थे यहाँ 256 हो जाएंगे, 256 से दूसरी गुणहानि चालू हो गई, उसका आधा 128 हो गए, उससे वहां से तीसरी गुणहानि चालू होगी। अभी ऐसे नंबर ऑफ गुणहानियां कितनी होगी टोटल, उसको कहेंगे नाना गुणहानि, नाना ने अनेक, टोटल नंबर ऑफ गुणहानियां, नाना गुणहानि का अर्थ क्या, टोटल नंबर ऑफ गुणहानियां कितनी होती है, यानी ऐसे आधा 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 कितने बार होगा अंतिम निषेक तक, तो उसको कहेंगे नाना गुणहानि। अब यहाँ क्या कहते देखो, यथार्थ में एक्चुअल में क्या है, अनंत परमाणु बनते हैं और उसमें नाना गुणहानि कितनी होती है, तो कहते पल्लोपम के असंख्यात विभाग मात्र, एक गुणहानि का प्रमाण भी उतना होता है, परंतु वो बाद में बताएंगे। नंबर ऑफ गुणहानियां टोटल कितनी होती है, तो इतनी असंख्यात गुणहानियां होती है, यानी असंख्यात बार वो आधा 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 होता चला जाता है, फिर भी अंतिम निषेक में भी अनंत रहेंगे, तो कितने अनंत बांधता है इसकी थोड़ी आइडिया आ जाएगी, ख्याल में आती है ना, प्रत्येक निषेक में अनंत, और जब स्पर्धक रचना देखेंगे तो एक निषेक में अनंत स्पर्धक होते हैं और एक एक स्पर्धक में अनंत वर्गणा होती है, और ऐसे निषेक कितने बने तो असंख्यात बने, तो हमें एक समय में कितना अनंत बांधता होगा इसका थोड़ा सा कल्पना तो कर सकते हैं जरा, ये कौन बता देंगे, तो केवल ही जानकर बता सकते और कोई नहीं। अभी देखो यहां से पढ़ेंगे, एक समय प्रबुद्ध में नाना गुनहानी शलाकाय, शलाकाय ने उसकी संख्या, नंबर ऑफ गुनहानिया कितनी होती है वो तो कहते पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र होती है। उनका स्पष्टीकरण यह है, प्रथम निषेक अवस्थित हानि से, अवस्थित हानि यानी फिक्स डिफरेंस, यानी हर बार उतनी की उतनी हानि, जितनी दूर जाकर आधा होता है उस अध्वान को, अध्वान यानी काल, यानी उतने निषेक, क्योंकि एक समय में एक निषेक है, तो इस समय 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 हम जितने समय जाने के बाद वो आधा होता है, उसको गुणहानि कहते हैं। उस गुणहानि की एक शलाका पृथक स्थापित करनी चाहिए, यानी एक गुणहानि को हम एक कहेंगे, एक संख्या कहेंगे, शलाका यानी उसकी संख्या। पुनः उतने ही अध्वान प्रमाण आगे जाकर, जैसे हमने आपको बताया कि आठ निषेक जाकर एक गुणहानि होती है, आगे के आठ निषेक जाने पर दूसरी गुणहानि हो जाएगी, उसको अध्वान कहा। आगे जाकर प्रक्षेप प्रथम निषेक के, अर्थात प्रथम गुणहानि, एक मिनट, एक शलाका का पृथक छापनी, पुनः उतने ही अध्वान प्रमाण आगे जाकर प्रक्षेप प्रथम निषेक के, अर्थात प्रथम गुणहानि संबंधी प्रथम निषेक के चतुर्भाग प्रमाण हो जाता है। इस अध्वान को दूसरी दुगुणहानि कहते, यह दुगुणहानि बताए ना, दो गुणहानि, अतएव उसकी दूसरी शलाका पृथक स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार यह क्रम कर्म स्थिति की अंतिम गुणहानि प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। इस इन शलाकाओं का समस्त जोड़ पल्लोपम के असंख्यातवे भाग मूत्र होता है, जो कि मुनि कर्म की नाना गुणहानि शलाकाओं के 3/7 भाग प्रमाण होता है, यह अर्थ कहा गया है। परंतु मोहनी, ये पूरा पढ़ती हूँ फिर अपने शब्दों में समझेंगे। परंतु मोहनीय कर्म की नाना गुणहानि शलाकाएं तो परम गुरु के उपदेशानुसार पल्लोपम की वर्ग शलाकाओं के अर्धच्छेदों से कम, पल्लोपम के अर्धच्छेदों के बराबर होती है। देखो अपनी भाषा में पल्ल्य के अर्धच्छेद को क्या कहते हैं, छे, हमने संदृष्टि बनाई थी ना, उसकी वर्गशला का क्या समझते हैं, जरा बताते हैं आपको। एक द्विरूप वर्ग धारा होती है, उसमें क्या है, दो का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, उसको कहेंगे द्विरूप वर्ग धारा। पहला स्थान है 4, 2 का वर्ग 4, ये पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर 4 का वर्ग 16, तीसरे स्थान पर 16 का वर्ग 256, चौथे स्थान पर 65,536, जिसको पनट्टी कहते हैं। तो ये 4 की वर्गशलाका 1 है, 16 की वर्गशलाका 2 है, 256 की वर्गशलाका 3 है, ये पनट्टी की वर्गशलाका 4 है। ऐसे ही आगे चलकर चलकर जहां पल्ल्य संख्या आएगी तो उसकी वर्गशलाका कितनी है, तो उसको हम नाम देंगे वो 1, 2, 3, 4, ऐसे हमने गिने ना, तो वो तो बहुत आगे चल कर रहती है, उसको हम कहेंगे वो, और उसके नीचे आता है पल्ल्य, इसी धारा में आगे चलकर पल्ल्य आता है। अब कहते कि अर्धच्छेद किसको कहना, अर्धच्छेद यानी दो संख्या कितने बार इसको भाग देंगे तो आती है, या दो संख्या को कितनी बार लिख के गुणा करेंगे तो ये संख्या आती है, तो 2 को कितनी बार गुणा करेंगे तो 4 आता है, 2 बार, तो इसके अर्धच्छेद है 2, 16 के अर्धच्छेद है 4, 256 के अर्धच्छेद है 8, 65 के अर्धच्छेद होते 16, ऐसे जाते हैं। इसके अर्धच्छेद कितने होते पल्ले के, उसको हम लिखेंगे 6, किसको क्या कहना उसकी बात है, वो किसको कहा, पल्ले की वर्गशलाका को, और 6 किसको कहा, पल्ले के अर्धच्छेदों को। यहां तक बात ख्याल में। अब उसको ये भी हो सकता है, अभी 1, 2, 3, 4 ये वर्गशला का है, ये 4 वर्गशला के अर्धच्छेद कितने हो गए, 2 वर्गशला का के अर्धच्छेद। अभी यहाँ क्या लिखा हमने लास्ट में, गुरु के उपदेशों अनुसार पल्ल्योपम की वर्ग शलाकाओं के अर्धच्छेदों से कम, वर्गशला के अर्धच्छेद को हम वच्छे लिखेंगे और पल्ल्य के अर्धच्छेदों को छे लिखेंगे। जैसे पनट्टी के अर्धच्छेद 16 होते हैं और पनट्टी के वर्गशलाका के अर्धच्छेद 2 होते हैं, हम पल्ल्य के बदले पनट्टी को ही लिखेंगे ना यहाँ पर। यहाँ क्या बताया लास्ट में कि पल्ल्योपम की वर्गशलाकाओं के अर्धच्छेदों से कम पल्ल्योपम के अर्धच्छेद, अपनी भाषा में पल्ल्य के अर्धच्छेद माइनस उसकी वर्गशला के अर्धच्छेद, पल्ल्य के अर्धच्छेद माइनस उसकी वर्गशलाका के अर्धच्छेद, यानी अपनी ये सूत्र ऐसा होगा 6 माइनस व 6। अगर हम पनट्टी को ही उस पर ही घटित करना है तो कैसा निकलेंगे, पल्ल के अर्धच्छेद 16 हम मान लेते हैं और उसके वर्गशलाका के अर्धच्छेद 2, 16 माइनस 2 14 हो जाएंगे, इस तरह से उसका अर्थ होता है। एक्चुअली वो तो असंख्यातों में संख्या है। अब यहाँ उन्हें वही उदाहरण लिया, देखो उदाहरण मान लो पल्ल्योपम उन्होंने 65,536 यानी पनट्टी के बदले उसी को पल्ल्योपम मान लिया, समझाने के लिए वर्गशला का अर्धच्छेद क्या होता है वो समझाने के लिए। इसके अनुसार पल्ल्योपम की वर्गशला का 4, ये 4 क्यों हमने आपको बताया था, चौथे स्थान पर 65,536 होते हैं उसी को हमने पल्ल्य मान लिया है समझाने के लिए, तो उसकी वर्गशला का हो गई 4 और पल्ल्योपम के अर्धच्छेद हो गए 16 और पल्ल्योपम की वर्गशलाकाओं के अर्धच्छेद हो गए 2 क्योंकि 4 का अर्धच्छेद 2 होता है। अतः मोहनीय कर्म की नाना गुनहानी शलाकाएं यानी नंबर ऑफ नाना गुनहानिया सॉरी नंबर ऑफ गुनहानिया 16 माइनस 2 14 होगी और ज्ञानावरण आदि कर्मों की नाना गुनहानी शलाकाएं 14 को 3 सप्तमों से गुना करना 6 होगी। देखो इसका अर्थ पहले समझते हैं। मोहनीय ने मिथ्यात्व, मिथ्यात्व कर्म उत्कृष्ट कितना बनता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, यानी मिथ्यात्व 70 कोड़ा कोड़ी सागर होता है और ज्ञानावरण का उत्कृष्ट बंध कितना है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। इसके प्रोपोर्शन में कितना होता है ये बताना। जैसे हम इसको एक कहेंगे, 70 कोड़ा कोड़ी सागर को हम एक संख्या देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, हाँ 30 डिवाइडेड बाय 70, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 30 डिवाइडेड बाय 70 ये कोड़ा कोड़ी सब आगे चले जाएंगे, 3 सप्तमांश हो जाएगा। इनका प्रोपोर्शन कितना है, 1:3 सप्तमांश। नाना गुनहानियों में भी बात ऐसी होगी, सबकी गुनहानी शलाका समान होती है, डिफरेंस कहाँ होगा नाना गुनहानियों में, सबके लिए मान लेते 8-8 निषेक मानेंगे एक गुनहानी के लिए तो उसका समान है, तो किसी की स्थिति 70 है तो किसी की 30 है, तो डिफरेंस कहाँ होगा। देखो समझाने के लिए हम दूसरा उदाहरण ले लेते, हम 70 और 30 समय हो ही लेते और एक गुनहानी हम 5 की मान लो ना, क्योंकि उसके इक्वल भाग जाना चाहिए इसलिए, तो इसमें कितने गुनहानियां होगी नाना। अभी वो स्थिति वहीं से समझो, आबाधा माइनस करके स्थिति समझो, समझाने के लिए तो कर रहे हैं। अब ये 10 भी मान लो ना आपको आसान हो जाएगा, तो इसकी 7 बनेगी तो इसकी 3 बनेगी, वही वहां कह रहे हैं। इसकी कितनी है पहले नाना गुनहानी कितनी है, 6 माइनस व 6 जिसको हमने 16 मानी थी, उन्होंने 16 उदाहरण दिया था, इसका कितना होगा, 16 का 3 सप्तमांश करो इतना। जैसे यहाँ कितना है, 7 है तो यहाँ 7 का 3 सप्तमांश 3 हमने डायरेक्ट निकाला था, इन्होंने उसका 3 सप्तमांश करके निकाला। ख्याल में आती ना बात, स्थिति भी उतने ही प्रमाण में होती उसकी और उसके वो सारे बाबा था उसके सब उस प्रमाण में होगी, नंबर ऑफ गुनहानियां उस प्रमाण में, एक गुनहानी उतनी होती है यानी आठ निशय जाकर वो आधा होता है हमारे उदाहरण में, वहां पर भी उतना ही होगा। उसकी ज्यादा गुनहानियां बनेगी, इसकी कम होगी। उसके निशय ज्यादा बनेंगे, इसके कम होंगे। यहां तक डिफरेंस है। अब आगे बढ़ेंगे, नीचे का पैराग्राफ 152 पृष्ठ पर। नाना गुनहानी शलाकाओं के द्वारा, यानी नंबर ऑफ गुनहानियां जो है उसके द्वारा कर्म स्थिति में भाग देने पर गुनहानी का प्रमाण आता है। जैसे मान लेते हैं ना 48 निषेक बने हैं और एक गुनहानी 8 की है, तो नाना गुनहानी यानी 8, सॉरी नाना गुनहानी कितनी होगी? 6। टोटल स्थितियां कितनी बनती? कर्म निषेक कितने हुए? तो 48। और नाना गुनहानियां कितनी हुई? तो 6। तो क्या करेंगे? 48 को 6 से भाग देंगे तो एक गुनहानी का प्रमाण 8 होगा। यहां तक बात ख्याल में आई? फिर से अभी हमने मान लेते, अभी यह दूसरी संदृष्टि बना लेते कि टोटल नंबर ऑफ निषेक कितने बने, तो कितने? 48। आपने पहले देखा था 64 समय की स्थिति बंधी, 16 समय के आबाधा थे और 64 में, तो यहाँ निषेक कितने बने? तो 48 निषेक बने। तो उन्होंने डेटा प्रोवाइड किया, नंबर ऑफ गुनहानियां कितनी है? तो 6 है। 6 बार आधा आधा होगा, तो 6 बार आधा होगा तो नंबर ऑफ गुनहानियां इतने 6 हो, तो इसको 6 से भाग दो तो एक गुनहानी का प्रमाण 8 आ जाएगा। ख्याल में आती बात? ये संदृष्टि यही है, फिक्स सब जगह यही संदृष्टि वाली है समझाने के लिए, क्योंकि मूल में वो असंख्यातों में है, वो हमारे समझ में नहीं आता, इसलिए संघीय संख्या छोटी लेके समझाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, देखो नाना गुनहानी शलाकाओं के द्वारा कर्म स्थिति। देखो कर्म स्थिति किसको कहा? स्थिति बंध नहीं है ये, नंबर ऑफ निषेक। पहली बात आई थी ना उन्होंने, क्या कहा उसमें? कर्म निषेक काल, कर्म स्थिति प्रमाण। वहां कर्म स्थिति पूरे स्थिति बंध को कहा था, परंतु यहाँ निषेक की रचनाओं को वहां करना। हाँ, उसको कर्म निषेक काल कहा था, तो वो कर्म निषेक काल को ही भाग देना है। गुणहानी का प्रमाण आता है और गुणहानी सर्व कर्मों की समान होती है, ये मुख्य बात है। क्योंकि भज्यमान राशि के अनुसार भागहार होता है, हमने क्या देखा? जितनी कर्म स्थिति बंधी है उसको नाना गुनहानी शलाकाओं से भाग दिया था, तो अलग अलग कर्मों की कर्म स्थिति भी जदोजदी है और उसके नाना गुनहानियां भी अलग अलग है, तो सबकी गुनहानी शला गुनहानी का जो प्रमाण है वो सबके लिए समान होता है। यह सर्वद्रव्य, सर्वद्रव्य एक शब्द आता है, वो सर्वद्रव्य एक शब्द है। सर्वद्रव्य किसको कहना? एक समय प्रबद्ध में बंधे हुए टोटल परमाणु, टोटल नंबर ऑफ परमाणु। किसमें से? समय प्रबद्ध में से। उसका नाम है, देखो ये दो यहाँ टर्मिनोलॉजी खुश आएगी। अभी हमने देखा गुनहानी क्या देखा, नाना गुनहानी क्या देखी, स्थिति किसको कहना? जितने टोटल ऑफ नंबर ऑफ निषेक उसको स्थिति कहेंगे। ये तीन तो शब्द आ गए, अब ये नया शब्द आया सर्वद्रव्य। सर्वद्रव्य ने टोटल नंबर, हमने 6300 मान लिए थे, 6300 का अभी यहाँ हिसाब चलेगा। तो सर्वद्रव्य प्रथम निषेक के प्रमाण से करने पर डेढ़ गुणहानी प्रमित प्रथम निषेक प्रमाण होता है। ये पूरा द्रव्य प्रथम निषेक के प्रमाण से करने पर, यानी क्या? 6300 को पहले निषेक के परमाणु की संख्या से भाग देंगे तो डेढ़ गुणहानी गुणित समय प्रबद्ध है, डेढ़ गुणहानी उसका प्रमाण आता है। दूसरी भाषा में 6300 परमाणु है, अब पहला निषेक उन्होंने बताया नहीं है, यहाँ तो कहते उसको डेढ़ गुणहानी से भाग दो तो प्रथम निषेक आएगा, या प्रथम निषेक को से भाग दो तो डेढ़ गुणहानि का प्रमाण आएगा। हमारी एक गुणहानि कितनी है? आठ। डेढ़ गुणहानि कितनी होगी? बारह। ख्याल में आती है बात? देखो, सह सर्वद्रव्य यानी 6300 जो अनंत परमाणु है, प्रथम निषेक के प्रमाण से करने पर, यानी प्रथम निषेक को एक यूनिट बना दो, यानी 512 का एक यूनिट बना दो, यानी दूसरी भाषा में 6300 डिवाइडेड बाय 512 कितने आते हैं? मोबाइल निकालो, पहला तो 512 का भाग जाएगा ना, दोनों आधा चलेगा, 118 रह गए और ऊपर आ गए, बारह पॉइंट, क्योंकि 12 ये एक गुणहानी 8, डेढ़ गुणहानी होती है 12, अभी वो साधिक किंचित न्यून वो सब उसमें आ जाता है। तो कहते सर्व द्रव्य प्रथम निषेक के प्रमाण से करने पर डेढ़ गुणहानी प्रमित प्रथम निषेक प्रमाण होता है, यानी सब पूरा टोटल द्रव्य कितना होता है, तो प्रथम निषेक को डेढ़ गुणहानी से गुणे करो इतना होता है। जो अपने 12 पॉइंट जो कुछ बात निकाली वो डेढ़ गुणहानी का प्रमाण है, उसको 512 से गुणा करो तो हमें 6300 परमाणु की संख्या आ जाएगी। इसका कारण यह है कि प्रथम गुणहानी में पतित द्रव्य से, प्रथम गुणहानी में पतित द्रव्य का अर्थ होता है पहला निषेक 512। अभी ये उन्होंने बाकी सब संदृष्टि नहीं दी है, तो संदृष्टि पूरी देखेंगे आप तो ये ख्याल में आ जाएगी आप कि पहला निषेक कितना, दूसरा निषेक कितना, उसकी ये निकाला 154 पेज। यहाँ उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसी रचना की है, वैसे वो निषेक नीचे से ऊपर तक दिखाते हैं। देखो यहाँ जो टेबल है ना, गुणहानि आयाम लिखा है, यानी वो पहले गुणहानि द्वितीय गुणहानि इस तरह से, गुणहानि आयाम होता है 8 समयों का, आयाम यानी लंबाई, गुणहानि के समय होते हैं 8, तो पहले गुणहानि के पहला निषेक जो है वो 512 का है, दूसरा कितना है 32 कम, ये फिक्स डिफरेंस है 480 448, इस तरह से आठवां हो जाता है 288, उसमें से और 32 कम कर दो तो 256 आ जाएगा। यहाँ से द्वितीय गुणहानि प्रारंभ हो गई, यानी वो 512 से आधा हो गया ना, वो क्रम से अभी 16 कम हो जाएंगे, अभी उसके हानि 16 की होगी, फिर 128 तक पहुंचे, अभी हानि 8 की होगी, हानि भी आधी आधी हो जाती। अब ये प्रथम गुणहानि 512 प्लस 480 प्लस 488, इसकी सबकी टोटल कितनी है तो 3200 है, इसको कहेंगे प्रथम गुणहानि में पतित द्रव्य, यानी पहली गुणहानि का टोटल द्रव्य। देखो हमने बहुत बार पढ़ा है या पहले कर्मकांड में जाना है इसलिए आसान लगता है, तो डायरेक्ट पहली बार पढ़ने के लिए इसके अर्थ ही नहीं भाषित हो जाते हैं ना। अब यहाँ फिर अपने पेज पर आना 152 पर, नीचे से तीसरी लाइन, इसका कारण यह है कि प्रथम गुणहानि में पतित द्रव्य से, टोटल पहली गुणहानि में पतित द्रव्य कितना अभी हमने देखा था 3200, इसके लिए पेज 154 देख लो। द्वितीयादि गुणहानियों में, द्वितीयादि यानी द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में पतित द्रव्य द्विभाग चतुर्भाग आदि क्रम से देखा जाता है। द्विभाग यानी उसको 1600 हो जाएंगे, उसका 1600 का भी आधा यानी 800 जो 3200 का चतुर्भाग है। आप वो गुणहानि वाली बात देखो, 154 पेज निकालो, वो टेबल निकालो। देखो पहले गुणहानि में पति द्रव्य जो टोटल नीचे लिखी है वो देखो 3200, उससे द्वितीय गुणहानि में पति द्रव्य है 1600, तृतीय में पति द्रव्य 800, चतुर्थ में 400, पंचम में 200, षष्ठम में 100 और सबकी टोटल कितनी 6300 जो हमने मान ली थी। अभी आना पेज नंबर 152 लास्ट लाइन। और इसका भी कारण यह है कि एक एक गुणहानि के प्रति ओगने चाहिए, आधे चाहिए, आधे आधे के आधे। आपके में करेक्शन किया है क्या? यानी एक एक गुणहानि के प्रति आधे आधे के आधे इत्यादि क्रम से गोपुच्छ विशेषों का नहीं, आप में करेक्शन होगा। हाँ हाँ, क्योंकि हमने करेक्ट करके भेजा था, आधे के आधे है ना, वहाँ क्या लिखा है। ये सब करेक्शंस दिए थे ना उनको, उन्होंने देखा है बरोबर। आधे के आधे इत्यादि क्रम से गोपुच्छ विशेषों का गमन पाया जाता है। ये तो क्या कहना चाहते हैं, ये जो हमने टेपरिंग दिखा है ना, ये ऐसा गाय की पूछ ऊपर जाड़ी होती है, नीचे एकदम टेपरिंग होती है, इस तरह से इसको कहेंगे गोपुच्छ। ये पूरी रचना उसको गोपुच्छ कहेंगे और उसमें एक एक जो निषेक है उसको कहेंगे गोपुच्छ विशेष। इत्यादि क्रम से गोपुच्छ विशेषों का गमन पाया जाता है। यह बात भी दो गुणहानि प्रमाण अवस्थित निषेक भागहार से विभज्यमान प्रथम निषेकों के उत्तरोत्तर आधे आधे प्रमाण पाए जाने से जानी जाती है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, निषेक भागहार जो है, निषेक भागहार यानी निषेक को जिस संख्या से भाग देते हैं तो उसका प्रमाण क्या है निषेक भागहार का, इसी का दूसरा नाम है दो गुणहानि। एक गुणहानि का प्रमाण कितना है 8, दो गुणहानि का प्रमाण कितना होगा 16, 8 × 16, तो 16 को हम निषेक भागहार कहेंगे। तो देखो यहाँ क्या लिखा, यह बात भी दो गुणहानि प्रमाण अवस्थित निषेक भागहार। निषेक भागहार हमेशा अवस्थित है, ने सेम है। निषेक भागहार की वैल्यू कितनी है 16, उसी का नाम है दो गुणहानि, उसी का नाम है निषेक भागहार। इन्हें निषेक भागहार 16 जो हमने मानी हुई संख्या, और वो हमेशा फिक्स है, इसके लिए फिक्स को कहेंगे अवस्थित। और उसका प्रमाण कितना है, दो गुणहानि प्रमाण होता है। दो गुणहानि, एक गुणहानि होती है 8 की, दो गुणहानि होती है 16 की। यहां तक ख्याल में आए? तो कहते यह बात भी दो गुणहानि प्रमाण अवस्थित निषेक भागहार से विभज्यमान, विभज्यमान यानी जिसको भाग देते हैं भज्यमान, कौन, प्रथम निषेक, उनके उत्तरोत्तर आधे आधे प्रमाण पाए जाने से जाती जाती। अभी इसका अर्थ वो 154 नंबर के टेबल में देख लो, ये हमें प्रथम निषेक जो संख्या है उसको हमको 16 से भाग देना है। 512 को 16 से भाग देते तो क्या हो जाता है, कितनी संख्या आती है 512 / 16, 32। तो यहाँ 32 आया प्रथम गुणहानि में, जो प्रथम गुणहानि का चय होगा। चय कैसे निकलते हैं, पहले निषेक डिवाइडेड बाय प्रथम निषेक डिवाइडेड बाय निषेक भागहार, यानी दो गुणहानि। प्रथम निषेक डिवाइडेड बाय दो गुणहानि इज इक्वल टू चय। अरे हर एक का चय देखो अलग अलग होगा, यानी वो कैसे निकालते हैं, प्रथम निषेक डिवाइडेड बाय दो गुणहानि, उसी का दूसरा नाम क्या हमने देखा, निषेक भागहार, जो कितना है 16 है, इज इक्वल टू चय। चय यानी पहले गुणहानि में, पहले 8 निषेकों में कितनी हानि होती चली जाएगी, 512 माइनस 32 तो 480 आए, माइनस 32 448 आए, माइनस 32 416 आ गए, ये उसका अर्थ है। अब दूसरे गुणहानि का डायरेक्ट निकालो, दूसरे गुणहानि का पहला निषेक आप वहां देख कर बताओ कितना है, टेबल में देखो 256 है। अभी उसी को उसी दो गुणहानि से भाग दो, 16 से भाग दो, तो कितना आया 16 आ गया, यानी यहाँ का चय कितना है 16, यानी 256 में से 16 माइनस करो तो 240, उसमें से 16 माइनस करो तो 224, ये पूरे में। अब मुझे बताना सोनी बेन, आप बताओ तृतीय गुणहानि मिला टेबल किस में देख रहे? टेबल में ही देख रहे ना। हाँ, उसमें पहला निषेक कितना है? पहला निषेक ऊपर लिखा है, प्रथम निषेक। देखो आपको कैसे पढ़ना है, यहाँ देखो ये टेबल है ना आपके पास, तो यहाँ ये पहली गुणहानि पूरी ऊपर से नीचे तक, ऊपर लिखा है प्रथम गुणहानि, ये पहला दूसरा तीसरा आठवां निषेक, द्वितीय गुणहानि उसके निषेक, तृतीय गुणहानि में पहला निषेक कितने का है उसकी संख्या 128 बताए ना। अभी 128 को 16 से भाग दो, 8 आ गया, तो वहां का चय कितना होगा? 8। इन्हें चय कैसे निकालते हैं? पहला निषेक डिवाइडेड बाय दो गुणहानि, पहला निषेक की जो वैल्यू है उसको 16 से भाग दो तो वहां का चय मिलता है। चय यानी उतनी उतनी हानि होगी वहां पर हर में, फिक्स डिफरेंस, फिक्स डिफरेंस। 64 को 16 से भाग देंगे तो वहां का चय 4 आ जाएगा, 32 को 16 से भाग देते हैं तो वहां का चय 2 आएगा, 16 को 16 से भाग देंगे तो वहां का 1 आएगा। 8 एक गुणहानि है, 2 गुणहानि डबल डबल करना। ये हम और इजी लैंग्वेज में बाद में पढ़ेंगे। भाग देते पहले पहले निषेक को, वही किसी भी निषेक की वैल्यू लानी है ना तो उसका भी तरीका है। फिर से ये वाक्य पढ़ती हूँ, तो ये हमने देखा था ना, वो तो विशिष्ट एक एक गुणहानि प्रति आधे आधे के वगैरह तो हमने देखे थे। पहला पहला निषेक देखो तो आधा आधा दिख गया, और वो कैसे जाना जाता है? यह बात भी दो गुणहानि प्रमाण अवस्थित निषेक भागहार से विभज्यमान प्रथम निषेकों के उत्तरोत्तर आधे आधे प्रमाण पाए जाने से जानी जाती है। इसका अर्थ समझ में आई बात? इस प्रकार आए हुए देशों डेढ़ गुणहानि के प्रमाण से, कुछ कम डेढ़ गुणहानि के प्रमाण से, जो कि संदृष्टि में 25 से कम 1600 के 128वें भाग मात्र होता है, यानी 1575 डिवाइड बाय 128। उससे समय प्रबद्ध में भाग देने पर 512 संख्या प्रमाण प्रथम निषेक आता है। यानी इन्होंने क्या किया कि कुछ कम डेढ़ गुणहानि से सर्व द्रव्य को भाग दिया तो पहला निषेक आ गया। मैंने 6300 को इस संख्या से भाग दिया, हाँ, तो उससे 512 संख्या आ गई। सर्व द्रव्य डिवाइडेड बाय किंचित कम डेढ़ गुणहानि इज इक्वल टू प्रथम निषेक, ये निकालने का डायरेक्ट तरीका है। प्रथम निषेक जो 512 निकलेगा, देखो विशेषार्थ इसी का समझा रहे, मैं उदाहरण पहले दे रहे फिर विशेषार्थ बताएंगे। इस प्रकार सर्व निषेकों के भागहार जान करके उत्पन्न करना चाहिए। उदाहरण द्रव्य 6300, इसी को सर्व द्रव्य भी कहते हैं। ये भागहार उन्होंने बता दिया है, यह कुछ कम डेढ़ गुणहानि, ये उसका भागहार है। देखो देखो आपको इसको सॉल्व करके देखो ना कितना आता है, आपके मोबाइल पर देखो 1575 डिवाइड बाय 128 करो, 8, 9, 17, 4, 3, 2, 5, 29 ऊपर आ गए 5, 128 256, किंचित कम नहीं है, अधिक हो गया। कितना हुआ? 12 पॉइंट हुआ ना, कम कहाँ है? नहीं नहीं 12 से वो तो थोड़ा संदृष्टि में फिट बैठता नहीं है, एक्चुअल में किंचित कम डेढ़ गुना नहीं, ऐसा उसका प्रमाण है। क्योंकि संदृष्टि कैसे बनाएंगे ना इतनी संख्या के लिए, हमारे यहाँ 12 पॉइंट समथिंग आता है, परंतु कुछ कम समझना, समझाने के लिए इन्होंने एग्जैक्ट जो कुछ उसकी फिगर है वो ले ली उसके। यहाँ तो साधिक 12 आ जाता है, परंतु वहाँ कुछ कम डेढ़ गुनाहानी में ले लेना है उसको। ये समझाने का दूसरा कोई तरीका नहीं, एक्चुअल फिगर ले नहीं सकते वहां पर। तो ये भागार उन्होंने वो मान ले लो, ये कुछ कम डेढ़ गुनाहानी ऐसा मान लो, तो उसको भाग देंगे 6300 उल्टा करके गुणा करो, ऊपर 128 करना। तेजल करेक्शन किया है, हाँ, नीचे 1575 यानी उल्टा करके गुणा किया, 512 संख्या आ गई। यह प्रथम निषेक का प्रमाण है, यह पहले निषेक का प्रमाण उन्होंने बता दिया। देखो डेढ़ गुणाने का प्रमाण यथार्थतः 8 + 4 = 12 होता है, क्योंकि 8 का डेढ़ गुणा करो, डेढ़ यानी 1.5 टाइम्स करना, पर संदृष्टि में जो भागार बतलाया है वह डेढ़ गुणाने से अधिक होता है। वो करके बताया, देखो 12.39/128 होता है, आपने भी 12 पॉइंट समथिंग निकाला ना, हाँ, तो भी इसे डेढ़ गुणाने से कुछ अधिक न कहकर कुछ कम कहा है, क्योंकि समझाने के लिए और तरीका कुछ नहीं है। क्योंकि फिगर्स जो हम छोटी छोटी देते हैं तो उसमें वो वैसा भागार गुणकार नहीं बन सकता, इसलिए उसको समझ लेना समझाने के लिए, एक्चुअल में दूसरी फिगर्स है, समझाने के लिए कुछ अलग बता दिए। आगे भी यह बात पाई जाती है किंतु अभिप्राय स्पष्ट है। हमें समझना क्या है, एक्चुअल में कुछ कम डेढ़ गुणाने वाला भागार होता है, उसके पूरे जो अनंत परमाणु बंधे उसको भाग देंगे तो पहले निषेक में संख्या आ जाएगी। यहां तक बात ख्याल में? विशेषार्थ। आगे सूत्र नंबर 32 की टीका में उद्धृत गाथा के द्वारा द्वितीय आदि निषेकों के भागार उत्पन्न करने की रीति यह बतलाई गई है कि प्रथम निषेक के भागार में इच्छित निषेक का भाग और प्रथम निषेक का गुणा करने से इच्छित निषेक का भागार निकल आता है। इस नियम के अनुसार प्रथम गुणहानि के द्वितीय आदि 7 निषेकों के भागार निम्न प्रकार होते हैं। यहाँ क्या कहना है, ये उन्होंने जो भागार जो है ना डेढ़ गुणहानि वाला, तो डेढ़ गुणहानि वाले भागार को 512 से गुणा किया और इच्छित निषेक कौन सा है हमारा 480 वाला, उससे भाग दिया, तो उसका अपना भागार मिलेगा। तीसरे के लिए वही भागार लिया 1575/128, 512 से गुणा किया और 448 से भाग दिया, यानी वो ऐसे ही अलग अलग भागार अपने अपने निषेकों के भागार निकालने के लिए तरीका है। किंतु इस नियम के अनुसार अभीष्ट निषेक का भागार उत्पन्न करने के लिए उस निषेक का प्रमाण पहले से ही ज्ञात होना चाहिए, पर हमें निषेक का प्रमाण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वो तो नहीं है हमको ज्ञात नहीं है, तो उसको निकालने का हमें कोई दूसरा तरीका होना चाहिए। देखो यहाँ नीचे के फुटनोट जरा बताते हैं, गोमरसार कर्मकांड में बताया है, आबाहम बोलाव्य परम निषेगम्य देय बहुगम तु, नहीं आबाधा कर छोड़कर पहले निषेक में ज्यादा द्रव्य दिया जाता है, तत्व विशेषहीनम विदीयस्य आदिम निषेयोक्ति, उससे विशेषहीन विशेषहीन यानी एक एक चय से घटता हुआ, विदीयस्य आदि दूसरे आदि निषेक से लेकर कहाँ तक अंतिम निषेक तक इसी पद्धति से दिया जाता है। विदीये विदीय निषेगे हानि पुविल्ल हानि अद्धम तु, यानी वो तो प्रति गुणहानि गुणहानि के प्रति हानि भी आधी आधी हो जाती थी। एवं गुणहानिम पड़ी हानि अद्धयम हो दी, इस तरह से गुणहानि गुणहानि के प्रति हानि यानी वो चय का प्रमाण भी आधा आधा हो जाता है। जैसे हमने देखा था पहली गुणहानि में 32-32 माइनस किए, दूसरे में 16-16 माइनस किए, तीसरे में 8-8 माइनस किए, इस तरह से। अभी हम आते हैं 154 पेज पर। यहाँ पर सर्व निषेकों की संदृष्टि इस प्रकार है, ये उन्होंने एक के आगे सब संदृष्टि लिख दिए, यह ऊपर से नीचे तक सब बातें बताइए। प्रथम निषेक का पहले, प्रथम गुणहानि का प्रथम निषेक 512, फिर 480, यानी वहां से पहला कॉलम ऊपर से नीचे तक पढ़ना, फिर दूसरा कॉलम ऊपर से नीचे पढ़ना, फिर तीसरा, इस तरह से सब है। यह संदृष्टि आबाधा काल से हीन कर्म स्थिति की है, क्योंकि कर्म स्थिति कहने से वो पूरी लेनी चाहिए 64 समय। अब यहाँ क्या कहा उन्होंने, आबाधा काल से हीन यानी 16 माइनस कर दिए तो 48 समय हो गए, जिसको हमने कर्म निषेक कहा था। ख्याल में आई बात, यानी पहले उसको हीन करके उतने निषेक बनाए उन्होंने, 48 बनाए। शंकाकार पूछते हैं, यह संदृष्टि समस्त कर्म स्थिति की क्यों नहीं है? उसका समाधान नहीं, क्योंकि आबाधा काल के भीतर प्रदेशों की निषेक रचना का अभाव होता है, यानी आबाधा काल में प्रमाण समयों में कोई निषेक रचना नहीं है, उसके ऊपर निषेक रचना होती है। तथा ऐसा मानने पर अंतिम गुणहानि का अध्वान 3000 वर्षों से कम भी नहीं होता है, क्योंकि यानी वो अंतिम गुणहानि वाला उसमें से कम करना पड़ेगा कुछ, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि नाना गुणहानि शलाकाओं से आबाधा रहित कर्म स्थिति के अर्पवर्तित करने पर एक गुणहानि आयाम अर्थात काल का प्रमाण प्राप्त होता है। क्योंकि हमने देखा था स्थिति, कर्म की स्थिति 64 समय हमने मान ली थी और आबाधा काल 16 समय था, तो आबाधा रहित कर्म स्थिति कितनी थी, 48, और 48 को हमने नाना गुणहानिया 6 से भाग दिया था तो एक गुणहानि का प्रमाण 8 आया था, यानी उसमें कोई दोष नहीं आता है। विशेषार्थ, यहाँ टीकाकार द्वारा दी हुई निषेकों की संदृष्टि निम्न कल्पनाओं के आधार से की गई है। उत्कृष्ट स्थिति 64 समय, आबाधा 16 समय, निषेक स्थिति 64 में से 16 गए तो 48 समय, ये निषेकों की स्थिति है। इसी को केवल स्थिति ऐसा भी कहेंगे। समय प्रबद्ध में पुद्गल परमाणुओं की संख्या 6300, उसको द्रव्य कहा या सर्वद्रव्य भी कहते हैं। तथा निषेक स्थिति में कर्म स्थितिपना असिद्ध नहीं है, यानी उसी को यहाँ कर्म स्थिति कहा है, क्योंकि कर्म एक्चुअली उसी में पड़े हैं, उसके नीचे तो कोई कर्म नहीं है, क्योंकि निषेक के अधिकार में निषेक स्थिति में ही कर्म स्थिति का व्यवहार देखा जाता है। यहाँ कर्म स्थिति कहने से वो पूरी 64 समय वाली नहीं समझना, क्योंकि यहाँ निषेक का अधिकार है, तो यहाँ कर्म की स्थिति किसको कहा, जितने निषेक बने उसी को यहाँ कर्म की स्थिति बताए। स्थितियां या निषेक को ही स्थिति भी कहते, इतनी स्थितियां हुई, ये कहने की पद्धति है। अथवा कर्म प्रदेश जिसमें ठहरते हैं, इस प्रकार स्थिति शब्द की व्युत्पत्ति के अवलंबन करने से भी निषेक स्थिति को कर्म स्थिति कहना बन जाता है, क्योंकि कर्म के परमाणु उतने में ही है उन निषेकों में, इसलिए उसी को कर्म स्थिति भी कहते हैं। अतएव नाना गुणहानि शलाकाओं से, हमने 6 मानी थी नाना गुणहानि शलाका, कर्म स्थिति के अपवर्तित करने पर यानी 48 को भाग देने पर एक गुणहानि का अध्वान यानी आयाम आता है। 48 को 6 से भाग देंगे तो एक गुणहानि का आयाम 8 बन जाता है। इस प्रकार जो पूर्वाचार्यों का व्याख्यान है वह भी विरोध को नहीं प्राप्त होता है। देखो यही संदृष्टि सर्वत्र उन्होंने ली है, कर्मकांड में भी यही, क्योंकि पद्धति थी पूर्वापार, यानी गुणहानि कहने से 8 वो फिक्स संख्या है, अलग अलग आचार्य अलग अलग संदृष्टि नहीं बनाते हैं। शंकाकार कहते संपूर्ण कर्म स्थिति को नाना गुणहानि शलाकाओं से अपवर्तित करने पर एक गुणहानि का आयाम आना ऐसा क्यों नहीं ग्रहण करते, यानी यहाँ क्या कहते हैं, 64 को 6 से भाग दो ना, तो होना चाहिए 48 को क्यों दिया, ये शंकाकार की शंका है। समाधान, नहीं, क्योंकि फल देने की अपेक्षा निषेक स्थितियों में अविद्यमान 3000 वर्षों का मध्यम राशि में अर्थात बज्जमान राशि में प्रवेश नहीं हो सकता। क्या कहना चाहते हैं, फल कौन देंगे, तो निषेक देंगे। हाँ, तो आबादा काल में कोई निषेक है नहीं है, तो जितने निषेक बनेंगे उतनी कर्म स्थिति, उसी को हमको नाना गुणानियों की भाग देना है उससे। इसलिए निषेक स्थिति को ही कर्म स्थिति स्वीकार कर एक गुणहानी का आयाम सिद्ध करना चाहिए। इसी को अभी विशेषार्थ में समझाते हैं। यहाँ सूत्रकार ने निषेकों के स्थिति भेदों को उत्पन्न करने के पहले निषेक स्थिति का निर्णय किया है कि उत्कृष्ट स्थिति में से आबाधा काल को घटा देने पर निषेक स्थिति शेष रह जाती है, उसको निषेक स्थिति कहा, और उसी को यहाँ कर्म स्थिति कह रहे हैं। इस निषेक काल में धवलाकार ने गुणहानियों आदि के द्वारा निषेक स्थितियों का निर्णय किया है। यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि दूसरे आचार्यों ने तो कर्म स्थिति और निषेक स्थिति का भेद न करके कर्म स्थिति में ही नाना गुणहानियों का भाग देकर गुणहानि आयाम उत्पन्न करने का उपदेश दिया है, अतएव प्रस्तुत उपदेश का उक्त व्याख्यान से विरोध उत्पन्न होता है। इसका समाधान धवलाकार ने इस प्रकार किया है कि पूर्व आचार्यों का भी वहाँ कर्म स्थिति से अभिप्राय इसी निषेक काल से रहा है, क्योंकि निषेक अधिकार में निषेक स्थिति के लिए ही कर्म स्थिति शब्द का व्यवहार देखा जाता है। ये समझ में, इसका अर्थ समझ में आए ना। आबाधा काल को पृथक किए बिना कर्म स्थिति में नाना गुणहानियों का भाग तो दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आबाधा काल में तो निषेक रचना होती नहीं, वहां कोई निषेक ही नहीं है, तो गुणहानि कब कहेंगे, जब निषेक है वहां से गुणहानि गिनेंगे। आबाधा काल में कोई निषेक ही नहीं, तो वहां गुणहानि का सवाल ही नहीं है। देखो, आबाधा काल को पृथक किए बिना कर्म स्थिति में नाना गुणहानियों का भाग तो दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आबाधा काल में तो निषेक रचना होती ही नहीं है, और इसलिए उस काल को शामिल करने की कोई सार्थकता नहीं। इस प्रकार पूर्वाचार्यों के उपदेश से भी कोई विरोध नहीं आता, और निषेक रचना के गणित में भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। अब यहाँ निषेक क्रम को कहते हैं। अब कहते हैं वही इस प्रकार है, नाना गुणहानि शला का प्रमाण जो गच्छ, नाना गुणहानि कितनी हमने मानी है, 6। वो समझ में, उसका संदृष्टि बनाई थी, जैसे हमने पनट्ठी को पल्ले माना था, और 6 - 6 यानी 16 - हमने 2 किए तो 14 आए थे, और उसका 3 सप्तमांश निकाला था, ये 7 के लिए 3 तो 14 के लिए 6, तो हमारी नाना गुणहानि शला का 6 आई थी। ख्याल में नहीं, 6 कहां से निकाले, तो कहते नाना गुणहानि शला का प्रमाण जो गच्छ, हमारे यहाँ 6 आया है, तत्प्रमाण 1 से लेकर दुगुनी दुगुनी संख्या लो। तत्प्रमाण 6 बार, इसका अर्थ ऐसा है, यह हमारी नाना गुणहानि शला का कितनी है, 6, तो 6 बार दुगुनी करो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 बार 2 को लिखो, आपस में गुणा करो, कितना आया, 1 × 2 = 4 × 8 × 16 = 32, नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही हुए, 6 कितना हुए, 64 हुए, 6 बार लिए, मैंने पहले 5 बार लिखा था। देखो 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 8, 8 × 16 = 16, 32 × 64। यहाँ फिर से पढ़ते, नाना गुणहानि शला का प्रमाण जो गच्छ, यानी गच्छ ने उसकी जो संख्या अभी 6 है, तत् प्रमाण उतनी बार 1 से लेकर दुगुनी दुगुनी संख्या लो और उसका योग कर लो, इस संकलन का जो फल आवे उससे समय प्रबद्ध में भाग देने पर। अभी उन्होंने अलग तरीका भी बताया एक बार दो कर, दो बार दो कर, इस तरह से किया है। पहली संख्या एक ली, उसको एक बार दोगुना किया, फिर और एक बार दोगुना किया, इस तरह से उसकी बात है। उसके और एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, चार बार हुआ, ये सब छः हो गए, एक से लेकर उतनी बार। इसकी टोटल संख्या कितनी होगी? इसको दोगुना करो, दो गुना है ना, दोगुना दोगुना संख्या की टोटल करनी है। अंत धनम गुणा गुणियम, अंतिम जो है उसको दोगुना करो, क्योंकि हमारा दोगुना वाला है। तो 32 को दोगुना करे तो 64 आ जाता है। आदि विहीनम, एक माइनस करो, पहला आदि को माइनस करो, डिवाइडेड बाय गुणकार माइनस वन, एक 63 आएगा। इसकी टोटल कितनी होगी? तो 63 आती है। इसी को दूसरी पद्धति से निकालना है, दूसरी पद्धति से। तो 6 बार दुगुना किया ना, तो 64 आया माइनस वन। इसको कहते हैं अन्योन्य अभ्यस्त राशि। अभी आएगी शायद आगे, जितने नाना गुनहानी है, नाना गुनहानी शला का, उतनी बार दो लिखकर आपस में गुना करो, उस संख्या को कहेंगे अन्योन्य अभ्यस्त राशि। अन्योन्य ने आपस में, अभ्यस्त ने गुणकार, नाना गुणानी शलाकाओं का जो प्रमाण है, उतनी बार दो लिखकर आपस में गुणा करो, उसको कहेंगे अन्योन्य अभ्यस्त राशि माइनस वन। ये 63 आ गए, उससे हम सर्वद्रव्य को भाग देंगे। वो क्या करना उसकी बात बताएंगे अभी। देखो यहाँ क्या कहते हैं, नाना गुणानी शलाका प्रमाण जो गच्छ, ये हम रिपीट करेंगे सब। ये पहले दिन में बहुत सारे शब्द सुन रहे हैं ना, हाँ। तत्प्रमाण एक से लेकर दुगुनी दुगुनी संख्या लो, यानी एक से दुगुने दो, फिर दूसरे दुगुनी चार, उसे इस तरह से उसका योग कर लो। यहाँ नीचे भी दिखा है उन्होंने बाद में, हाँ, योग कर लो ने टोटल कर लो, योग करते थे टोटल। इस संकलन का जो फल आवे, संकलन यानी जो एडिशन हुई ना, संकलन करने ने एडिशन करना, ये योग हो गया टोटल, जमा कर देना उसको। उसका जो फल आया यानी उसका उत्तर जो आएगा, उससे समय प्रबद्ध में भाग देने पर, अभी हमारे संख्या 63 आ गई थी, उसमें समय प्रबद्ध में भाग देने पर जो लब्ध होगा, 6300 डिवाइडेड बाय 63 कितना आ जाएगा? 100। उससे पूर्वोक्त दुगुण क्रम के अंतिम आदि धन में गुणा करने से क्रमशः प्रथम द्वितीय आदि गुणहानियों का द्रव्य प्राप्त होता है। देखो यहाँ उनकी भाषा यानी अटपटी थोड़ी, हमने जो सीखा था उसमें और ज्यादा सरल था, जो समय ज्ञान चंद्रिका में था। ये पहले यहाँ का पढ़ लेते, फिर आपको अपनी भाषा में समझाएंगे। ये कल करना नियोग परिचय पुस्तक होगी तो ले आना, तो उसमें ये बहुत सरल करके समझा शुरुआत में। उदाहरण, समय प्रबद्ध 6300, नाना गुनहानी शला का 6, अतएव गुनहानी शला का मान गच्छ का एकादि, एक से आदि लेकर द्विगुण संकलन हुआ, यानी एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस छह बार है ना, तो पहले है एक, दूसरी बार दो हुआ, तीसरी बार चार, चौथी का 8, पांचवी का 16, छठी का 32, टोटल हुआ 63। तो 6300 को 63 से भाग दिया तो 100 आ गए। अतः 6 गुणियानियों का द्रव्य इस प्रकार है। ये जो जिसकी जो छठी बार को 32 था, पांचवी को 64 था, 16 था, इस तरह से, तो 100 को 32 गुना करेंगे तो 3200 प्रथम गुणहानी का द्रव्य होता है। हमें जो सिखाया गया था ऐसा था, 6300 डिवाइडेड बाय 63 कितना आया? 100। हमारे पास गुणहानियां कितनी है? 6 है। डायरेक्ट छठी गुणहानी का द्रव्य 100 है। नीचे आना, डबल डबल करना, नीचे डबल, ये उल्टा करेंगे। उन्होंने पहले 3200 से गुणा किया डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ छठे स्थान पर 32 आया था ना, ऊपर का गणित देखो, इसे 32 से गुणा किया, किसी को 16 से गुणा किया, किसी को 8 से गुणा किया, हम ऊपर से नीचे तक आते हैं ना उल्टे क्रम से, तो अंतिम गुणहानि का टोटल द्रव्य 100 है, पांचवे गुणहानि का 200 है, चौथे का 400 है, तीसरे का 800 है, दूसरे का 1600 है, पहले का 3200 है। उन्होंने डायरेक्ट 3200 कैसे निकाला, तो ऊपर जो 1 2 3 4 5 है ना, यानी ऊपर से 1 2 3 4 लिखे, तो 1 2 4 8 16 32, तो 32 से गुना करेंगे तो 32 होता है, तो नीचे के पहली गुनाहानी का द्रव्य 1600 को डायरेक्ट 16 से गुना करेंगे तो 1600 द्वितीय गुनाहानी का द्रव्य। ये गुनाहानी हम नीचे से ऊपर तक गिनते हैं, इस तरह से टोटल समस्त द्रव्य 6300 आ जाता है। अभी आगे का गणित नहीं करेंगे, इसी को कल फिर देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नम सदा देत हो। मयंक भाई।